आरव डॉक्टर मानसी से आयु के बारे में बात करने गया था। उसने आयु को सिक्योरिटी गार्ड के भरोसे छोड़ा था और साथ ही ये भी कहा था कि वो किसी को भी अंदर न आने दे। माहिरा ने नर्स की ड्रेस पहन रखी थी और चेहरे पर मास्क लगाकर वो आयु के रूम में आई। आयु को स्पंज बाथ देने के बहाने माहिरा रूम के अंदर चली गई और उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था। माहिरा ने एक इंजेक्शन तैयार किया और आयु को गुड बाय कहा। इंजेक्शन लगाने से पहले माहिरा आयु के चेहरे को गौर से देख रही थी। माहिरा ने आयु की तरफ देखकर धीरे से कहा, इस हॉस्पिटल गाउन में बिना मेकअप के भी तुम काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। अब समझ में आ रहा है आरव तुम्हारे प्यार में क्यों पड़ा होगा। सिंप्लिसिटी लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और तुम्हारे मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तुम चाहती तो मेरा मुझसे सब कुछ ले जाती, मैं खुशी खुशी दे देती, लेकिन आरव मेरी ज़िंदगी है और मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम बिना सच जाने मर जाओ। आरव ने तुमसे काफ़ी कुछ छुपाया होगा, क्योंकि वो ऐसा ही है। वो सामने वाले को वही बातें बताता है जितनी उसे जाननी चाहिए। बोलते हुए माहिरा आयु के पास बैठ गई। वो उसके कान के पास आकर धीरे से बोली, तुम्हारी बहन को मैंने ही उस रात धक्का दिया था। तुम दोनों बहनों की डेस्टिनी भी अजीब है ना, दोनों मेरे हाथों से ही मरने जा रही हो, और वो भी आरव के चक्कर में। चलो अब मेरा गिल्ट खत्म हो गया और तुम्हारे साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी कि तुम बिना सच जाने मर गई। बातें बहुत हो गईं, अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है मिसेस खुराना, गुड बाय। माहिरा ने लगभग 5 मिनट तक आयु से बातें की और वो उसे इंजेक्शन लगाने ही जा रही थी कि तभी एक झटके से दरवाज़ा खुला। माहिरा इंजेक्शन आयु के अंदर इंजेक्ट करती, उससे पहले किसी ने उसका हाथ पकड़कर उस इंजेक्शन को फेंक दिया और फिर उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ लगाया। जब किसी ने माहिरा का हाथ पीछे से पकड़ा तो उसकी सांसें रुक गई थीं। एक पल के लिए उसे लगा कि आरव वाला है, लेकिन वो आरव नहीं, फैज़ था। फैज़ ने माहिरा का हाथ पकड़ा और उसे झटके से खींचकर सामने किया। फिर फैज़ ने माहिरा के गाल पर कसकर तमाशा लगाते हुए कहा, यहाँ पर आपको देखकर ही समझ गए थे कि आप इस तरह की घटिया हरकत करने ही आई होगी माहिरा लूथरा। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है, अब आप आरव खुराना से बात करना और अपनी हरकत की सफाई देना। पहले फैज़ को अपने सामने देखकर तो बाद में आरव का नाम सुनकर माहिरा घबरा गई। उसने जल्दी से नामे सिर हिलाते हुए कहा, हे लिसन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। आपने जो हरकत की है उसके बाद आराम से बैठना तो बाद में आता है, हम आपसे बात ही नहीं करना चाहते, फैज़ ने गुस्से में जवाब दिया। फिर उसने माहिरा को साइड किया और आयु के पास आकर उसे देखने लगा। माहिरा ने अपनी सफाई देते हुए कहा, इसे कुछ नहीं हुआ है, मैं इंजेक्शन देने ही जा रही थी पर बीच में तुम आ जाए। अब तुम बताओगे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो फैज़ खान। जहाँ तक मुझे याद है हम तो राइवल्स हैं, इस हिसाब से आरव भी तुम्हारा दुश्मन हुआ, तो तुम आरव की वाइफ के कमरे में क्या कर रहे हो? कहीं तुम भी इसे मारने के इरादे से तो यहाँ नहीं आए? माहिरा की बात सुनते ही फैज़ उसकी तरफ पलटा और उसे उंगली दिखाते हुए सर्द लहजे में कहा, हम पर ऐसा झूठा इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 बार सोच लेना माहिरा लूथरा, तुम जैसों को उसकी औकात याद दिलाना हमें अच्छे से आता है। ठीक है, मान लेती हूँ कि तुम इसे मारने के लिए नहीं आए थे, फिर भी तुम्हें बताना होगा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं तुम्हें ये पसंद तो नहीं आ गई? बोलते हुए माहिरा ने फैज़ को घूरते हुए देखा। उसके फेस पर ईविल स्माइल थी। वो फैज़ की पर्सनैलिटी और उसके बारे में काफ़ी कुछ जानती थी, इसलिए उसने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया। फैज़ ने माहिरा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप आयु की तरफ देखने लगा। माहिरा समझ गई थी कि फैज़ उसके सवाल का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा। वो मुस्कुराकर बोली, अरे तुम चुप क्यों हो? देखो, मुझे तुम्हारी तरह तहजीब से बात करनी नहीं आती है, पर एक बात समझ गई हूँ कि हम दोनों का मकसद एक ही है, तुम्हें आयु चाहिए और मुझे आरव, चलो डील करते हैं। माहिरा का ऑफर सुनकर फैज़ ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। वो अफसोस से सिर हिलाकर बोला, आप जैसी औरत से हमें यही उम्मीद थी, हम इन्हें खुद के दम पर पा सकते हैं माहिरा लूथरा, तो हमें तुम्हारी तरह चीप हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम हमारे कोई काम की नहीं हो, उस आदमी के साथ पिछले 7-8 साल से हो, फिर भी उसे अपना नहीं बना पाई। फैज़ की बातों ने माहिरा को गुस्सा दिला दिया। वो थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोली, अपनी हद में रहो, जानते हो ना मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ? हाँ, अच्छे से जानते हैं आपको, पेट पीछे वार करना आपके पूरे परिवार की आदत है, लेकिन हम वैसे नहीं हैं, हम सामने से वार करते हैं, फैज़ ने माहिरा की बात बीच में काटकर कहा। माहिरा ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। वो जानती थी फैज़ से लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, इनफैक्ट वो उसकी मदद कर सकता था। माहिरा ने खुद को शांत किया और फैज़ को समझाते हुए बोली, देखो आरव किसी भी वक्त यहाँ आता होगा, तुम चाहे कितने भी अच्छे इंटेंशन के साथ यहाँ आए होगे, लेकिन वो तुम्हें गलत ही समझेगा, हमें बाहर चलकर बात करनी चाहिए। फैज़ को मना करने का मौका नहीं मिला क्योंकि माहिरा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगी। बाहर आकर उसने देखा फैज़ के गार्ड्स ने आरव के गार्ड्स को बंदूक के दम पर चुप कराया हुआ था। फैज़ के बाहर निकलते ही के गार्ड्स फैज के पीछे चल दिए तो वहीं माहिरा फैज को वहां से दूर किसी ऐसी जगह लेकर जा रही थी जहां वो उसे आराम से बात करके समझा सके। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मानसी से बात करके आरव आयु के पास वापस आ रहा था। अयान ने आरव को जाते हुए देखा तो वो उससे बात करने के लिए उसके पास आने लगा। आयु का सच छुपाने की वजह से आरव अयान से भी नाराज था और उससे बात नहीं कर रहा था। अयान तेज कदमों से चलकर आरव के पास गया और उसका हाथ पकड़कर कहा, भाई प्लीज लिसन टू मी, जो हुआ उसमें मेरी कहीं भी गलती नहीं है। आप आयु से गुस्सा है तो उसके होश में आने पर उससे नाराज हो जाइएगा। मुझ पर अपना गुस्सा क्यों उतार रहे हो? क्योंकि तुम्हें दोस्ती निभाने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा है। तुम क्यों भूल जाते हो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मैं तुम्हारी लाइफ में पहले आया था लेकिन तुम उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, आरव ने सिर हिलाकर कहा। अच्छा तो आपको इस वजह से जलन हो रही है, ठीक है आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन प्लीज इस तरह रूडली बिहेव मत कीजिए। आप तो मुझसे ठीक से बात तक नहीं कर रहे, प्लीज मान जाइए। चलिए हम दोनों बच्चों को देखने चलते हैं, आपको पता है वो दोनों बिल्कुल आपकी तरह दिखते हैं। अयान बच्चों के सहारे आरव को मनाने की कोशिश कर रहा था। आरव ने कुछ पल अयान के चेहरे को देखा और फिर बिना किसी भाव के कहा, फिलहाल के लिए मेरी उनसे कोई फीलिंग नहीं जुड़ी है। आई नो उनकी कोई गलती नहीं रही होगी पर उन्हीं की वजह से आज वो कोमा में है। जिस दिन उनको पैदा करने वाली होश में आकर मुझसे बात कर लेगी उसी दिन उसके साथ में उनका चेहरा देख लूंगा और तुम सबसे बात भी कर लूंगा। आरव ने अयान को आगे कुछ कहने का मौका नहीं दिया, वो वहां से आयु के रूम में जाने लगा। उसे देखते ही बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने दूसरे गार्ड को चुप रहने का इशारा किया। उन्होंने फैज के जबरदस्ती अंदर घुसने की बात आरव से छुपाने का फैसला लिया। आयु के रूम में माहिरा को फैज ने पकड़ लिया था, उसने माहिरा से आयु को बचा लिया था, लेकिन माहिरा के दिमाग में इस वक्त कुछ और ही चल रहा था। इसी सिलसिले में बात करने के लिए माहिरा फैज को कैंटीन एरिया में लेकर गई, हालांकि वो उससे बात नहीं करना चाहता था लेकिन माहिरा जबरदस्ती उसे वहां ले आई थी।
माहिरा ने फैज को एक चेयर पर बिठाते हुए खुद उसके सामने आकर बैठ गई। उसने सीरियस टोन में कहा, देखो तुम अच्छे से जानते हो मैं तुम्हें क्या कहने वाली हूँ। हम दोनों भले ही दुश्मन हों लेकिन अपने अपना प्यार पाने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। आरव उससे बहुत प्यार करता है, वो उसे दूर नहीं जाने देगा। तुम खुद सोचो, उसने अपने खुद के बच्चों तक की शक्ल नहीं देखी क्योंकि उनकी वजह से आयु कोमा में चली गई। क्या तुम्हें लगता है कि इतनी आसानी से वो तुम्हें आयु को ले जाने देगा? और जब तक आयु आरव से अलग नहीं हो जाती मैं उसे नहीं पा सकती। हमें कुछ भी करके इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी होगी ताकि ये अलग हो जाए और हमारा काम आसान। माहिरा ने अपनी तरफ से फैज को समझा दिया था। उसे लगा इतना समझाने के बाद फैज उसकी बात समझ गया होगा, लेकिन फैज ने बोरियत भरे लहजे में कहा, लोग आपको माफिया प्रिंसेस के नाम से जानते हैं। हमें आप काफी कूल लगी थी जब भी आपको पार्टी वगैरह में देखा था, लेकिन आज आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे आप टीवी सीरियल्स कुछ ज्यादा ही देख रही हैं, तभी उन्हीं की तरह प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही हैं। कम ऑन माहिरा लूथरा, डोंट फॉरगेट हम कौन हैं। हमें ऐसी कॉन्स्पिरेसीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है फिर मुझे बता दो तुम्हारा प्लान क्या है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, माहिरा ने बिना सोचे समझे कहा। माहिरा की हालत देखकर फैज समझ गया था कि वो आरव को हर हाल में पाना चाहती है और उसने अब तक जो भी कोशिश की थी वो नाकाम हुई थी, तभी वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। फैज ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और माहिरा की बात पर हामी भरते हुए कहा, ठीक है फिर हमारे अगले स्टेप का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए यही एडवाइस देते हैं कि आरव, आयु या उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। जिस दिन आयु पूरी तरह ठीक हो जाएंगी उस दिन हमें एक कॉल कर देना, अगले दिन वो हमारे पास होगी। और ये तुम कैसे करोगे? कोई जादू की छड़ी है तुम्हारे पास जो तुम घुमाओगी और वो तुम्हारे पास आ जाएगी? माहिरा ने सिर हिलाकर पूछा। जादू की छड़ी तो आपके पास भी है माहिरा लूथरा, लेकिन वो क्या है ना आपको यूज करना नहीं आता, फैज ने माहिरा का मजाक बनाते हुए कहा। माहिरा आगे कुछ कहती उससे पहले फैज उठकर वहां से चला गया था। उसके जाने के बाद माहिरा ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और धीरे से कहा, वैसे तो मुझे इस सनकी के साथ काम करने का कोई शौक नहीं है लेकिन आरव के चक्कर में ये भी करना होगा। ठीक है मेरा काम ये कर रहा है तो मैं क्यों मेहनत करूं? फैज की वजह से माहिरा आरव को लेकर लापरवाह हो गई थी और अब वो उसके कहे मुताबिक आरव के साथ चिपकी रहती थी। आयु के बच्चे अब लगभग 25 दिन के हो चुके थे। इतने दिनों में भी उसे होश नहीं आया था तो आरव की उम्मीदें टूट चुकी थी। पहले वो गौरवी जी से बात करता था लेकिन अब उसने गौरवी जी से भी बात करना बंद कर दिया था, बस पूरे दिन आयु के पास बैठा रहता था। सुबह के वक्त आरव आयु के पास बैठा हुआ था तभी गौरवी जी, अयान, साक्षी और छवि उसके पास आए। अचानक उन सबको एक साथ वहां देखकर आरव समझ गया था कि वो क्यों आए होंगे। वैसे भी पिछले 25 दिनों में जब भी उनमें से कोई भी मिलता वो आरव से यही कहता कि एक बार वो अपने बच्चों का चेहरा देख ले। उन सबको वहां देखते ही आरव को कोई हैरानी नहीं हुई। उसने उनकी तरफ देखकर सर्द लहजे में कहा, लिसन, अब अगर आप फिर से सब मिलकर मुझे ये समझाने आए हैं कि मैं उन दोनों बच्चों का चेहरा देख लूं या उनकी केयर करूं तो ये मुझसे नहीं होगा। आज 25 डेज हो गए, ये एक लाश की तरह पड़ी हुई है और मुझे कोई उम्मीद नहीं कि कब तक ये होश में आएगी, मुझसे बात करेगी। आप लोग मेरी तकलीफ समझ क्यों नहीं रहे हो? बोलते हुए आयु की आंखें नम हो गई। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और आंसू बाहर निकलने से पहले ही आंखों के कोनों को साफ किया। गौरवी जी आरव के पास आईं और उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, आज दोनों बच्चों को NICU से डिस्चार्ज मिल रहा है, वो पूरी तरह हेल्दी हैं। अब तक तुम्हें फोर्स नहीं किया, बस कहते रहे, लेकिन आज तो ऐसा मत करो। उनकी माँ उनके साथ नहीं है तो उसकी एब्सेंस में तुम्हें उसके सारे फर्ज निभाने होंगे। दादी ऐसा कुछ मत कहिए जिससे मेरा गुस्सा बढ़ जाए, आयु अभी जिंदा है और इसका काम यही करेगी, बस थोड़ा टाइम लग रहा है, आ जाएगी होश में, आरव ने भारी आवाज में जवाब दिया। उन सबको लगा था कि आरव गौरवी जी की बात मान लेगा क्योंकि वो कभी उनकी बात नहीं टालता था, लेकिन आरव अभी भी अपनी जिद पर अड़ा था तो अयान ने उसके पास आकर कहा, प्लीज भाई, अगर आयु होश में आई और उसे ये सब पता चला तो सोचिए उसे कितना बुरा लगेगा, और अगर आपके बच्चे बड़े हुए और कल को ये बात उन्हें पता चली कि आपने एक महीने तक उनकी शक्ल भी नहीं देखी थी तो वो कितना बुरा फील करेंगे। तुम किसे समझा रहे हो अयान, अच्छे से जानते हो कि इसे बस अपनी जिद करनी होती है, साक्षी ने थोड़ा रूढ़ वे में कहा। उसे लगा आरव शायद इस तरीके से मान जाए। आरव पर अभी भी उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ, सब अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कह चुके थे, लेकिन छवि बिल्कुल चुप थी और वो आयु की तरफ देख रही थी। उसे ऐसे लगा जैसे आयु के हाथ में मूवमेंट हो रही हो। आरव ने छवि की तरफ देखकर कहा, इन सब का हो गया है मॉम, आपको भी कुछ कहना है तो कह दीजिए, और प्लीज सब जाइए यहाँ से, मुझे अपनी मिसेस खुराला के साथ अकेले रहना है। छवि ने आरव से कुछ नहीं कहा, उसने अयान की तरफ देखकर कहा, मुझे ऐसे लगा जैसे इसका हाथ हिल रहा हो, पूरा हाथ नहीं बस फिंगर्स में मूवमेंट हो रही थी, मैं पहले भी इस रूम में आई हूँ, मैंने थोड़ी बहुत मूवमेंट नोटिस की थी। वाओ मॉम, हर बार की तरह आपके तरीके काफी डिफरेंट और मैनिपुलेटिव होते हैं, मैं 24 घंटे इसके पास रहता हूँ, मैंने कोई मूवमेंट नोटिस नहीं की, आपको क्या लगता है आप ये सब बोल देंगी तो मैं ये सोच लूंगा कि इसे होश आ रहा है और आपकी बात मानकर बच्चों के पास चला जाऊंगा, आरव ने सार्कास्टिक वे में मुस्कुराते हुए कहा। वो सब बात कर ही रहे थे कि तभी आयु को खांसी आई। इतने दिनों में पहली बार आरव ने आयु की कोई मूवमेंट को नोटिस किया था, अयान समझ गया था। वो तेज आवाज में बोला, इसे शायद होश आ रहा है, प्लीज आप सब लोग बाहर चले जाइए, फिलहाल इस रूम में जितने कम लोग रहेंगे उतना ही सही रहेगा। अयान तेजी से चलकर आयु के पास आया और उसका चेकअप करने लगा। सब एक एक करके रूम से बाहर चले गए, यहाँ तक कि आरव भी। अयान ने डॉक्टर मानसी और बाकी टीम को बुला लिया था ताकि आयु को अच्छे से ऑपरेट कर सके। एक बार फिर आरव बाहर था और आयु अंदर, और उसकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। दिल ही दिल में सभी यही दुआ कर रहे थे कि आयु को होश आ जाए।